कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की जहां भगवान और शैतान बहुत ही आराम से एक साथ बैठे हैं, मतलब वे किसी इंसान की जिंदगी पर दांव लगा रहे हैं।
हाँ, ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है।
बिल्कुल, और महज ये देखने के लिए कि वो इंसान किस बिंदु पर आकर टूट जाएगा। हाँ, उसके बच्चों को मार दिया जाता है, उसकी पूरी संपत्ति राख कर दी जाती है,
और इतना ही नहीं, उसके शरीर को भयानक बीमारियों से भर दिया जाता है।
सही कहा। तो सदियों से लोग बुक ऑफ जॉब को पढ़ते आए हैं और उनके मन में एक बहुत ही डरावना सवाल उठता रहा है, मतलब क्या भगवान सच में इतने क्रूर हैं?
ये सवाल तो लाजमी है,
है ना? क्या वो इंसानों की त्रासदियों पर स्वर्ग में बैठकर शर्तें लगाते हैं? और अगर ऐसा है तो भाई हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं?
ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है।
तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी पर बात करेंगे। हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन के शोध पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि शायद हम इस प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने में एक बहुत बड़ी बुनियादी गलती कर रहे हैं।
पर यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि लोग अक्सर एक बहुत ही सीमित नजरिए के साथ इस किताब को देखते हैं। मतलब वे सोचते हैं कि या तो 100% ऐतिहासिक दस्तावेज है
कि मतलब जो लिखा है एक घटना जस की तस हुई थी।
बिल्कुल, या फिर वे मानते हैं कि ये 100% कोरी कल्पना है, एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन प्राचीन साहित्यों के मामले में इन दो चरम सीमाओं के बीच फंसना पूरी तरह से गलत सवाल पूछने जैसा है।
मतलब इतिहास बनाम कल्पना वाला ये जो नजरिया है वो एक गलत द्विभाजन है, एक फॉल्स डाइकोटमी।
एकदम सही, क्योंकि प्राचीन मध्य पूर्व में जहाँ ये किताब लिखी गई थी, साहित्य को इस तरह से नहीं मापा जाता था। वहाँ ज्ञानवर्धक साहित्य का एक बहुत बड़ा और समृद्ध वर्ग था।
अच्छा, ज्ञानवर्धक साहित्य मतलब जैसे कहावतें या भजन?
हाँ, उसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाली कहावतें हुआ करती थीं, दार्शनिक संवाद होते थे। लेकिन जब हम बुक ऑफ जॉब को देखते हैं तो ये उस प्राचीन दुनिया में भी पूरी तरह से अनोखी है।
सच में अनोखी कैसे?
मतलब इसका कोई एक स्थापित साहित्यिक परिवार नहीं है जिससे हम इसकी तुलना कर सकें। ये अपने आप में बिल्कुल अकेली खड़ी एक रचना है।
और मुझे लगता है यही बात एक पाठक के तौर पे सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। मतलब सोचिए ना, जब हम कोई रहस्यमयी उपन्यास पढ़ते हैं तो हम हर किरदार को शक की नजर से देखते हैं।
हाँ, क्योंकि हमें पता होता है कि हर सुराग के पीछे कोई राज है।
बिल्कुल, लेकिन अगर हम कोई व्यंग्य या कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। किसी भी रचना की शैली हमें एक रोडमैप देती है कि उसे पढ़ना कैसे है।
सही बात है।
तो अगर जॉब की किताब की कोई स्थापित शैली ही नहीं है तो एक आम पाठक इसे समझे कैसे? वो रोडमैप कहां से लाए? ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं।
तो इस रोडमैप को समझने के लिए डॉक्टर वॉल्टन एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस पूरी किताब को एक वैचारिक प्रयोग यानी एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह देखना चाहिए।
थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब विज्ञान वाले प्रयोग की तरह?
एक तरह से हाँ। लेखक असल में एक क्या हो अगर वाला परिदृश्य तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य ये साबित करना नहीं है कि इतिहास के किसी विशिष्ट दिन क्या हुआ था,
बल्कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जहाँ किसी जटिल दार्शनिक मुद्दे को परखा जा सके।
बिल्कुल, ये कुछ कुछ यीशु के दृष्टांतों जैसा है। उनका मकसद ऐतिहासिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना नहीं था, बल्कि उन कहानियों के जरिए इंसानी स्वभाव और आध्यात्मिक सच्चाइयों को बेनकाब करना था।
रुकिए, अगर आप ये कह रही हैं कि ये महज एक वैचारिक प्रयोग है या एक दृष्टांत है, तो क्या इससे इस ग्रंथ की अहमियत कम नहीं हो जाती? मेरा मतलब है, अगर ये ऐतिहासिक रूप से सच नहीं है तो क्या ये सिर्फ एक प्राचीन फिक्शन बनकर नहीं रह जाता? क्या हम इसके दार्शनिक महत्व को बचाने के लिए इसे सिर्फ एक प्रयोग का नाम नहीं दे रहे हैं?
ये सोचना कि ऐतिहासिक सत्य के बिना कोई रचना महज फिक्शन या महत्वहीन हो जाती है, ये हमारी आधुनिक सोच का नतीजा है। प्राचीन पाठक इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे
कि किसी कहानी का सच उसके ऐतिहासिक होने में नहीं है।
बिल्कुल, बल्कि उसमें निहित संदेश में होता है। और इस वैचारिक प्रयोग की ताकत इस बात में है कि इसका परिदृश्य कितनी सावधानी से रचा गया है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो जोब के मामले में ये परिदृश्य क्या है?
जोब के मामले में ये मुद्दा मानवीय पीड़ा, ब्रह्मांड में न्याय और इन सब के बीच ईश्वर की कार्यप्रणाली का है। इन सवालों के जवाब आप सीधे तौर पर नहीं दे सकते।
हाँ, क्योंकि ये बहुत जटिल विषय हैं।
सही कहा, आपको एक ऐसा मंच तैयार करना होगा जहां इंसानी धारणाओं को चुनौती दी जा सके।
और शायद यही कारण है कि इस किताब में सब कुछ इतना भयानक और अपनी चरम सीमा पर है। मतलब ये मुझे इंजीनियरिंग की दुनिया की किसी स्ट्रेस टेस्ट की याद दिलाता है।
स्ट्रेस टेस्ट? वो कैसे?
जैसे जब कोई नया पुल बनाया जाता है तो इंजीनियर उस पर सिर्फ एक दो कार्य नहीं चलाते हैं, वे जानबूझकर उस पुल पर उसकी क्षमता से कई गुना ज्यादा वजन डालते हैं।
अच्छा, ये देखने के लिए कि वो कब टूटता है।
बिल्कुल, वे देखना चाहते हैं कि वो पुल किस दबाव पर जाकर टूटता है और जब वो टूटता है तो उसके कमजोर हिस्से कौन से होते हैं।
हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि जॉब की किताब भी मानवीय आत्मा और न्याय की हमारी धारणाओं का एक स्ट्रेस टेस्ट है?
अरे वाह, ये स्ट्रेस टेस्ट वाली उपमा ये समझने के लिए एकदम सटीक है कि किताब में हर चीज को उसकी चरम सीमा तक क्यों धकेला गया है।
तो चरम सीमा पर ले जाने का असली मकसद क्या था? लेखक जानबूझकर उन सभी आसान जवाबों को खत्म कर रहा है जो हम अक्सर पीड़ा के समय देते हैं। हाँ, जरा कल्पना कीजिए, अगर जॉब एक आम इंसान होता जो ज्यादातर समय अच्छा रहता लेकिन कभी कभी स्वार्थ में आके गलतियां कर बैठता।
और फिर उस पर यह विपत्ति आती।
हाँ, तो क्या होता?
तब तो बात बहुत ही साफ हो जाती। उसके दोस्त कहते, और शायद हम पढ़ने वाले भी यही कहते, कि हाँ भाई, उसने फला दिन वो पाप किया था, उसी की सजा भगवान उसे दे रहे हैं।
बिल्कुल, कर्मों का फल मिल गया और कहानी वहीं खत्म हो जाती।
आसान जवाब मिल गया।
ठीक इसी तरह अगर उसकी पीड़ा थोड़ी कम होती, मान लीजिए उसे व्यापार में भारी घाटा हो जाता या कोई ऐसी बीमारी हो जाती जो कुछ महीनों में ठीक होने वाली हो,
तो लोग कह सकते थे कि दुनिया में थोड़ी बहुत परेशानी तो सबको होती है, इसमें इतना हायतौबा मचाने की क्या बात है।
सही बात है, लेकिन लेखक ने इन दोनों दरवाजों को बंद कर दिया है। जॉब पूरी तरह से, मतलब 100% निर्दोष है। वो इतना धर्मी है कि खुद भगवान उसकी मिसाल दे रहे हैं।
और दूसरी तरफ उसकी पीड़ा अकल्पनीय रूप से भयंकर है।
हाँ, जब सब कुछ एकदम चरम पर होता है तभी हमारे घिसे पिटे कर्मों के फल वाले आसान जवाब काम करना बंद कर देते हैं। पाठकों के पास उस असहज कर देने वाले सवाल का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
ये तो एक बहुत ही प्रभावशाली और सोची समझी रणनीति है, लेकिन इससे एक और बड़ी उलझन पैदा होती है। ऐतिहासिक सच्चाई और इस साहित्यिक रचना के बीच हम रेखा कहाँ खींचते हैं? मतलब क्या इस किताब में कुछ भी असल में नहीं हुआ था?
डॉक्टर वॉल्टन का शोध स्पष्ट करता है कि जॉब नाम का व्यक्ति शायद अतीत का एक असली ऐतिहासिक व्यक्ति था। प्राचीन काल में वो अपनी महान धार्मिकता और भयानक पीड़ा के लिए एक मिसाल के तौर पर जाना जाता होगा।
मतलब वो एक ऐतिहासिक एंकर है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा बुनी गई है।
बिल्कुल, लेकिन इस किताब के भीतर जो विस्तृत जानकारी है, खासकर उनके संवाद, वो एक साहित्यिक रचना है, एक लिटरेरी कंस्ट्रक्ट है।
साहित्यिक रचना से आपका क्या मतलब है?
इतनी उच्च, जटिल और काव्यात्मक भाषा में बात नहीं करने लगते है ना।
हाँ, जाहिर है। और सबसे बड़ी बात, उस जमाने में कोई स्टेनोग्राफर तो बैठा नहीं था जो धूल में बैठे उन लोगों के हर एक शब्द, हर एक काव्यात्मक रूपक को जस का तस पन्नों पर उतार रहा हो।
बिल्कुल सही कहा, यही कारण है कि लगभग सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि जॉब और उसके दोस्तों के बीच के लंबे भाषण एक साहित्यिक उपकरण है।
अच्छा, तो लेखक ने उन ऐतिहासिक किरदारों का उपयोग करके उस दौर के अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोणों को आवाज दी है।
एकदम सही।
लेकिन अगर हम ये मान लें कि दोस्तों के भाषण एक रची गई चीज है क्योंकि उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो फिर मुझे एक कदम और आगे जाना होगा।
किस बारे में?
किताब की शुरुआत में वो दृश्य आता है जिसके बारे में मैंने शो के शुरू में बात की थी, स्वर्ग का दृश्य।
हाँ, जहाँ भगवान और शैतान दरबार में बैठे हैं।
हाँ, और जॉब की भक्ति पर दाव लगा रहे हैं। अगर दोस्तों की बातचीत साहित्यिक रचना है तो क्या स्वर्ग का वो दृश्य भी, मतलब क्या भगवान सच में इंसानों की जिंदगी पर इस तरह शर्तें लगाते हैं?
अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़े तो डॉक्टर वॉल्टन का तर्क यही है कि हमें स्वर्ग के उस दृश्य को भी उसी वैचारिक प्रयोग का हिस्सा मानना चाहिए।
और किताब के अंत में जो भगवान के लंबे भाषण आते हैं,
वे भी साहित्यिक रचना का ही हिस्सा है, वे किसी ऐतिहासिक घटना की रिकॉर्डिंग नहीं है।
ये बात तो कई लोगों का दिमाग चकरा सकती है। मतलब ये मानना कि इंसान के शब्दों को रचा गया है वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के शब्दों और स्वर्ग की कार्य प्रणाली को भी लेखक ने रचा है? क्या प्राचीन पाठक इसे ईशुनिंदा नहीं मानते?
आधुनिक दिमाग के लिए ये पचपाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन गहराई से सोचने पर ये असल में एक बहुत बड़ी राहत है।
राहत? वो कैसे?
एक रिपोर्टिंग मान ले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का ईश्वर असल में ऐसे ही काम करता है
कि वो शैतान के साथ बैठकर इंसानों की बर्बादी पर शर्तें लगाता है।
बिल्कुल। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपनी जिंदगी में भयानक त्रासदियों से गुजर रहे हैं, कैंसर से लड़ रहे हैं, या जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है।
अगर वे इसे शाब्दिक सच मानते हैं तो वे सोचने लगेंगे कि क्या स्वर्ग में मेरे बारे में भी ऐसी कोई शर्त लगी है? क्या भगवान मुझे सिर्फ परखने के लिए ये सब कर रहे हैं?
हाँ, और ये तो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देगा ना,
है ना?
सच में ये बहुत भयानक विचार है।
इसीलिए इसे एक वैचारिक प्रयोग मानना जरूरी है। लेखक असल में ये कह रहा है कि एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर स्वर्ग में ऐसा कोई परिदृश्य बने जहां इंसान की भक्ति सिर्फ स्वार्थ पर टिकी हो तो धरती पर क्या होगा। अच्छा, तो ये किताब हमें ये बताने के लिए नहीं लिखी गई है कि स्वर्ग का प्रशासन कैसे चलता है या वहां फैसले कैसे होते हैं।
बिल्कुल नहीं। ये धरती पर मानवीय पीड़ा को समझने, भगवान की भूमिका पर चर्चा करने के लिए एक दार्शनिक मंच तैयार कर रही है।
तो किताब की असली शिक्षा उस रचे गए साहित्यिक परिदृश्य से निकलती है, न कि इस बात से कि वो घटना सच में घटी थी या नहीं।
एकदम सही।
तो अगर ये पूरा ग्रंथ हमारे घिसे पिटे आसान जवाबों को तोड़ने के लिए बिछाया गया एक जाल है, तो फिर लेखक ने इस जाल को बुना कैसे? डॉक्टर वॉल्टन इस किताब के ढांचे के बारे में बहुत विस्तार से बात करते हैं।
हाँ, इस किताब की संरचना को समझना इसके संदेश तक पहुंचने की सबसे बड़ी चाबी है, और इसका ढांचा बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है।
वो कैसे?
आप इसे एक सैंडविच की तरह देख सकते हैं।
सैंडविच?
हाँ, इसके जो बाहरी हिस्से हैं, यानी किताब की शुरुआत जहाँ कहानी स्थापित होती है और किताब का अंत जहाँ कहानी खत्म होती है, ये दोनों हिस्से गद्य में लिखे गए हैं।
गद्य यानी आम बोलचाल की भाषा।
बिल्कुल। ये एक बहुत ही सरल कहानी सुनाने वाली शैली है जिससे प्राचीन पाठक पूरी तरह से परिचित थे। ये एक सुरक्षित और जानी पहचानी दुनिया का एहसास कराती है।
लेकिन जैसे ही आप उस आरामदायक गद्य से निकलकर सैंडविच के बीच वाले हिस्से में पहुंचते हैं, सब कुछ बदल जाता है, है ना?
एकदम बदल जाता है। अचानक से आप एक बहुत ही घने, जटिल और काव्यमय संवादों के बीच आ गिरते हैं। ये हिस्सा अध्याय 3 से लेकर अध्याय 27 तक चलता है।
जहां जोब और उसके 3 दोस्त लगातार एक दूसरे से बहस करते हैं।
हाँ, और ये कविता इतनी जटिल है कि ये पाठक को भ्रमित कर देती है।
लेखक ने जानबूझकर ऐसा किया है।
बिल्कुल, क्योंकि वो चाहता है कि पाठक भी उसी मानसिक उथल पुथल और भ्रम को महसूस करे जिससे जोब गुजर रहा है।
लेकिन अध्याय 27 के बाद संवाद खत्म हो जाते हैं। किताब के बाकी हिस्से में अध्याय 29 से लेकर अंत तक कोई बहस नहीं होती।
सही कहा, उसके बाद सिर्फ एक तरफा भाषण है।
हाँ, जॉब अपना लंबा भाषण देता है, फिर एक नया किरदार एलीहू आता है, और अंत में एक तूफान के बीच से खुद ईश्वर बोलते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी उत्सुकता इन दोनों बड़े हिस्सों के ठीक बीच में मौजूद अध्याय 28 को लेकर है।
अध्याय 28।
डॉक्टर वॉल्टन इसे बहुत महत्व देते हैं। अक्सर लोग पढ़ते हुए ये मान लेते हैं कि ये भी जॉब ही बोल रहा है, लेकिन इस अध्याय में ऐसा क्या खास है जो इसे पूरी किताब का केंद्र बिंदु बनाता है?
ये अध्याय 28 पूरी किताब के नजरिए को बदलने वाला धुरी है, एक पिवट है। अध्याय 27 तक आते आते जॉब और उसके दोस्तों के बीच की वो लंबी और तीखी बहस पूरी तरह से अपनी ऊर्जा खो चुकी होती है।
ऊर्जा खो चुकी होती है मतलब?
आप इसे पाठ की संरचना में भी देख सकते हैं। दोस्तों के भाषण धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। जोफर, जिसके पास शुरुआत में ज्ञान का भंडार था, अब पूरी तरह से चुप हो जाता है।
और बिलदाद?
बिलदाद बहुत ही छोटा और थका हुआ जवाब देता है।
व्यवहार मान लेते हैं, लेकिन ये तो प्राचीन दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान माने जाते थे। उनके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए था, वे इतनी जल्दी थक क्यों गए?
क्योंकि उनका पूरा का पूरा ढांचा न्याय पर टिका था, जस्टिस पर। वो दुनिया को एक वेंडिंग मशीन की तरह देख रहे थे।
वेंडिंग मशीन?
हाँ, मतलब आप मशीन में अच्छे कर्मों का सिक्का डालिए, आपको भगवान से सुख और समृद्धि मिलेगी। आप बुरे कर्मों का सिक्का डालेंगे, आपको सजा मिलेगी।
तो दोस्त कह रहे थे कि चूंकि जॉब सजा भुगत रहा है, इसलिए उसने पक्का कोई बुरा कर्म किया होगा।
और जॉब कह रहा था कि उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया, इसलिए भगवान की वेंडिंग मशीन खराब है और भगवान अन्यायी है।
अच्छा, दोनों पक्ष उसी न्याय के चश्मे से दुनिया को देख रहे थे।
बिल्कुल। और जब आप एक जटिल दुनिया को इस साधारण लेन देन वाले फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं तो अंततः आप थक हार कर चुप हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसी नहीं चलती।
यानी वे गलत सवाल का जवाब ढूंढने में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर रहे थे।
एकदम सही। और यहीं पर अध्याय 28 आता है। यहाँ जॉब नहीं बोल रहा।
तो कौन बोल रहा है?
यहाँ अचानक से वो कथावाचक वापस आता है, नरेटर, जिसने किताब की शुरुआत में हमें गद्दे में कहानी सुनाई थी। वो पाठकों की तरफ मुड़ता है और मानो ये कहता है कि क्या तुमने इन तथागतित सबसे बुद्धिमान लोगों की बहस सुनी? ये कहीं नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये गलत रास्ते पर थे।
इंसान कभी भी ब्रह्मांडी न्याय की पूरी तस्वीर नहीं देख सकता।
हाँ, कथावाचक बताता है कि असली मुद्दा न्याय का है ही नहीं, असली मुद्दा ज्ञान का है, विजडम का।
तो ये न्याय और ज्ञान के बीच का बुनियादी फर्क क्या है?
न्याय वो है जहां आप हर चीज का हिसाब मांगते हैं, हर पीड़ा का कारण जानना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान वो है जहां आप ये स्वीकार करते हैं कि दुनिया बहुत जटिल है, ये एक लेन देन की मशीन नहीं है।
ये बहुत गहरी बात है।
ज्ञान इस बात में है कि जब आपको अपनी पीड़ा का कारण समझ में ना आए, तब भी आप उस अनिश्चितता में भगवान पर कैसे भरोसा करते हैं और जीवन को कैसे जीते हैं।
तो मतलब अध्याय 28 पाठकों को न्याय की व्यर्थ बहस से निकालकर आगे आने वाले भगवान के उन भाषणों के लिए तैयार करता है जो इसी जटिलता और ज्ञान पर आधारित हैं।
बिल्कुल, ये एक बहुत शानदार पुल है।
ये तो ऐसा है जैसे हम एक बहुत ही करीब से ली गई तस्वीर को देख रहे थे जहां सिर्फ पिक्सल दिखाई दे रहे थे, और अचानक अध्याय 28 में कैमरा जूम आउट होता है और हमें पूरी विशाल तस्वीर दिखाई देने लगती है।
बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने।
तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर लेखक ने इतना जटिल ढांचा तैयार किया है और हमें इतनी चरम सीमाओं पर ले जाकर हमारे आसान जवाब छीने हैं, तो आज के आधुनिक पाठक के रूप में हमारा काम क्या है? डॉक्टर वॉल्टन की एक बात जो मुझे बहुत प्रभावशाली लगी वो ये थी कि बाइबल हमारे लिए लिखी गई थी, लेकिन ये सीधे तौर पर हमको संबोधित करके नहीं लिखी गई थी।
यह लेखक के मूल उद्देश्यों को यानी ऑथोरियल इंटेंट को समझने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्राचीन लेखकों ने अपने समय की सांस्कृतिक मान्यताओं, अपने समाज की साहित्यिक शैलियों और अपनी भाषा के हिसाब से लिखा था।
वे 21वीं सदी के पाठकों के वैज्ञानिक मानकों को ध्यान में रखकर नहीं लिख रहे थे।
बिल्कुल नहीं।
इसका मतलब है कि हम किसी प्राचीन ग्रंथ को उठाकर उसे आज के न्यूज़पेपर या इतिहास की किताब की तरह नहीं पढ़ सकते।
नहीं पढ़ सकते। हमें उन प्राचीन लेखकों के जमाने के नियमों के हिसाब से उनके संदेश को समझना होगा। हम किताब में से अपने मनमाने अर्थ नहीं निकाल सकते।
हमें इस बयानबाजी की रणनीति को समझना होगा, यानी किताब की शैली, उसका ढांचा और उसके वैचारिक प्रयोग को।
हाँ, क्योंकि असली अधिकार और पवित्र ज्ञान उसी संदेश में छिपा है जो लेखक और अंततः ईश्वर उस रचना के माध्यम से देना चाहता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये एक ऐतिहासिक रिपोर्ट नहीं बल्कि ज्ञान की खोज का एक वैचारिक प्रयोग है, तब जाकर हम इस किताब के असली और गहरे अर्थ को समझ पाते हैं।
ये पूरी चर्चा हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देती है। अगर जॉब जैसी एक अत्यंत प्राचीन रचना मानवीय पीड़ा के सबसे गहरे सच को उजागर करने के लिए एक वैचारिक प्रयोग और चरम सीमाओं का उपयोग कर सकती है, तो ये आज के हमारे सूचनाओं से भरे दौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।
बिल्कुल, बहुत बड़ा सबक है।
आज के दौर में जब कोई जटिल जानकारी, कोई कहानी या कोई दावा सामने आता है, तो शायद तुरंत उसके शाब्दिक सच में उलझने के बजाय एक कदम पीछे हटना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि बताने वाला हमें किस दिशा में ले जा रहा है, वो हमारे कौन से आसान जवाबों को चुनौती दे रहा है।
सही कहा।
शायद असली ज्ञान उसी असहज कर देने वाले बिंदु पर मिलता है जहां पुरानी धारणाएं टूटती हैं और आसान जवाब खत्म हो जाते हैं। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आसान जवाबों से आगे बढ़कर गहराई में छिपे ज्ञान की तलाश जारी रखिए।